भेद है स्वर में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से योना नबी की पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ भी मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है परमेश्वर की दया। तो आइए श्रोताओ, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी इन दिनों परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों और परिवार के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इन दिनों बाइबल में से योना नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आप सबको मालूम है कि योना नबी की पुस्तक में हमने 6 बातों को देखा है। जी हाँ, पिछले अध्ययन में हमने इस पुस्तक के परिचय और इसके अध्याय 1 के कुछ पदों को देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम सब इस पुस्तक की और भी गंभीर बातों को सीखें और जानें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगे, ताकि हम योना नबी की पुस्तक के द्वारा अपने जीवन में और अधिक ज्ञान को सीख सकें और उसे ग्रहण करने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम योना नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। पवित्र आत्मा आप उनके सहायक हों ताकि जो वचन आज हम सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से यह वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनके जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। आप मुझसे भी बातचीत करें, मुझे भी सिखाएं, हम सब से बातचीत करें और इस अध्ययन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें ताकि हम आपके महान कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हमने देखा है कि योना को नीनवे नगर में जाकर प्रचार करने के लिए कहा गया, जो योना को बड़ा विचित्र लगा। मेरे विचार में योना शमौन पत्रस के जैसा था। उसने परमेश्वर से कहा होगा, एक मिनट, तूने एलिय्याह को मिस्र नहीं भेजा, तूने एलिशा को भारत नहीं भेजा, तू मुझसे ऐसा काम क्यों करवाता है, तूने अन्य किसी भविष्यद्वक्ता से नहीं करवाया और वो काम मुझे दिया है। मुझे योना से सहानुभूति है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि परमेश्वर अपनी विधि को बदलना क्यों चाहता है, परंतु यह पुस्तक प्रकट करती है कि परमेश्वर अन्य जातियों का भी प्रभु है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 29 पद में पौलुस लिखता है कि क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है? क्या वह अन्य जातियों का परमेश्वर नहीं है? जी हां, वह अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। योना को यह बात आगे चल करके समझ में आई। हमने देखा पिछले अध्ययन में जहां पर लिखा हुआ था योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। योना का अनुभव आपके लिए सहायक होगा जब कठिन परिस्थिति में आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा में हैं या नहीं। मैं आपको इतना अवश्य बता देना चाहता हूं या मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी कठिन परिस्थितियों का अर्थ यह नहीं कि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं। यदि आज आपके लिए सब कुछ अच्छा है और आसान है तो आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा में हैं, तो यह आपका भ्रम है। तो मेरे मित्रों, आप संकट काल में इस पर निर्भर नहीं रह पाएंगे। देखिए, योना के साथ सब कुछ सुव्यवस्थित है, उसे परमेश्वर एक काम देता है, परंतु वह विपरीत दिशा में चलता है। वह परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। वह याफा जाता है, वहां उसे एक जहाज भी मिल जाता है। वह भाड़ा देकर उसमें जाकर सो जाता है। सब कुछ बहुत आसान है। मेरे विचार में योना गवाही दे सकता था, जैसी आज सुनने को हमें मिलती है। मैं याफा पर टिकट की पंक्ति में खड़ा था, मेरा नंबर आते ही जगह भर गई थी। तभी एक फोन आया और किसी ने अपना टिकट रद्द करवाया और मुझे जहाज पर जगह मिल गई। परमेश्वर चमत्कारी है, अद्भुत कार्य करने वाला है। योना ने सोचा होगा कि वह परमेश्वर की इच्छा में चल रहा है। आज अधिकांश विश्वासी ऐसा ही सोचते हैं। कठिन समय में वे कहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं और सब अच्छा होता है, तो वे कहते हैं कि वे परमेश्वर की इच्छा में हैं। मेरे प्रिय मित्रों, आपकी परेशानियों का अर्थ है कि शैतान परेशान है, कि आप परमेश्वर के लिए प्रभावी हैं। मैंने अपनी सेवा में यह अनुभव पाया है। आपके कष्टों का अर्थ यह नहीं कि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं। योना के साथ अब तक जो हुआ उसे लोग किस्मत वाला कहते हैं, परंतु परमेश्वर उसे मछली के पेट में डालकर निनवे नगर की ओर लाएगा। वर्षों से परमेश्वर के लोग कष्टों का सामना कर रहे हैं। यदि मैं डेविड लिविंगस्टन के स्थान पर होता, जो एक महान प्रचारक थे, तो कष्टों के कारण निश्चय ही सोचता कि परमेश्वर ने मेरा रास्ता बंद कर दिया है। वह चाहता है कि मैं घर वापस लौट जाऊं। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 36 से 38 पद में लिखा है, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि कुछ लोग विश्वास के कारण तलवार से बचे, कुछ लोग विश्वास के कारण तलवार से मारे गए। अतः आप अगम परिस्थितियों को परमेश्वर की इच्छा के विपरीत जीवन या सुगम परिस्थितियों को परमेश्वर की इच्छा के अनुकूल जीवन नहीं कह सकते। मेरे विचार में योना जहाज पर खड़ा भूभाग को दूर होता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा होगा और मन ही मन सोच रहा होगा कि वह यात्रा कैसी सुखद होने वाली है। परंतु आगे हम देखेंगे कि उसकी यात्रा इसकी आशा के विपरीत अत्यधिक भयानक होगी। समुद्र में ऐसी आंधी उठेगी कि जहाज डूबने लगेगा और सब यात्री अपने अपने परमेश्वर को पुकारने लगेंगे। योना निश्चिंत होकर के नाव में अर्थात जहाज में सो रहा था। तब हम देखते हैं कि उन्होंने पर्चियां डालकर नाम निकाला कि किसके कारण उन पर यह कष्ट या विपत्ति आया है। तो पर्ची योना के नाम पर निकली। तब उसने उन्हें बताया कि वह परमेश्वर से विद्रोह करके भाग रहा है और यह सब उसके विद्रोह के कारण ही हुआ है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने योना भविष्यद्वक्ता से कहा कि वह अशुरों की राजधानी निनवे में जाकर उसका संदेश सुनाए कि यदि वे अपने अधर्म के मार्ग से फिरें तो परमेश्वर उन्हें नष्ट नहीं करेगा, परंतु वे मन ना फिराएं तो वह उन्हें नष्ट कर देगा। हम देखते हैं कि योना ने निनवे जाने की अपेक्षा तर्शीश का जलमार्ग पकड़ा। परमेश्वर सब कुछ देख रहा था। परमेश्वर से दूर भागना संभव नहीं। अतः उसने समुद्री आंधी भेजी और जहाज संकट में फंस गया। अब वे क्या करते? तो किसी ने कहा कि यह किसी के पाप के कारण ही हम पर विपत्ति आई है, अतः चिट्ठियां डालकर नाम निकाला जाए। और इस प्रकार योना का नाम निकला। तो योना ने स्वीकार किया कि वह एक यहूदी है और परमेश्वर की इच्छा के विपरीत वह तर्शीश को जा रहा है। जाना तो उसे वास्तव में निनवे था। मेरे प्रियो, आइए हम आगे देखते हैं। प्रचंड आंधी, योना 1 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। ध्यान दीजिए, लिखा है, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। मैं आपसे आरंभ में ही कहा था कि यह आंधी अलौकिक घटना थी और इसका उत्तरदायी परमेश्वर था। मेरे मित्रों, गलील सागर की भयानक आंधी में शिष्यों की नाव को जलमग्न कर सकती थी, परंतु वह अलौकिक घटना प्रभु यीशु को हानि पहुंचाने के लिए थी, जो शैतान का काम था। हम मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 38 पद में पढ़ते हैं, पत्रस प्रभु यीशु से कहता है कि उसे लेश मात्र भी चिंता नहीं कि उनका नाश हुआ जाता है। यदि प्रभु यीशु ना होता तो ऐसा ही होगा, जो होना निश्चित था। मेरे प्रियो, योना की कहानी में भी आंधी भयंकर है, परंतु उसका उद्देश्य किसी की भलाई करने का है। वह एक संपूर्ण देश को बचाने जा रहा था। वह अपने भविष्यद्वक्ता को पथ भ्रष्ट होने से बचा रहा था, क्योंकि उसे एक काम दिया गया था और जिससे योना भाग रहा था। आइए हम पढ़ते हैं योना 1 अध्याय उसके 5 पद, जहां पर लिखा है, तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। मेरे प्रियों, ध्यान दीजिए, वे नाविक समुद्र की गतिविधियों से परिचित थे, अतः वे भाप गए कि यह आंधी साधारण नहीं थी। और तब हम देखते हैं कि योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था। मैं कभी इस पर विचार करता हूं और मैं यह मानता था कि यदि मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के बाहर हो जाए और पाप में जीवन व्यतीत करे तो उसका विवेक उसे सताएगा और वह परेशान रहेगा। क्या योना के साथ ऐसा ही था? योना परमेश्वर की इच्छा से भागकर नीनवे से यथासंभव दूर तर्शीश चला जाना चाहता था, तथापि उसे पूर्ण विश्वास था कि सब ठीक है। जहाज के अन्य जाति जो मूर्ति पूजक थे, मूर्ति पूजक नाविकों की जान पर बन आई थी और योना निश्चिंत होकर सो रहा था। आइए आगे देखते हैं कि क्या होता है। योना 1 अध्याय के 6 पद में लिखा है, तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। यहां पर हम देख रहे हैं कि माझी ने आकर उससे कहा, तू इस भयानक तूफान में भी निश्चिंत सो रहा है? पूरे जहाज पर केवल वही एक ऐसा व्यक्ति था जो निश्चिंत होकर के सो रहा था। उन्होंने उससे कहा, अपने देवता को पुकार कि वह हमें डूबने से बचा ले। योना तब ऊपर आया और देखा कि सचमुच में भयंकर तूफान उठा है। तब हम आगे पढ़ते हैं योना 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। मेरे प्रियो, आप मुझे गलत ना समझे, मैं जुआ खेलने और लॉटरी लगाने के विरुद्ध हूं, क्योंकि इससे राजस्व बढ़ाने के लिए जन सामान्य की महान हानि होती है। यद्यपि इस घटना में परमेश्वर ने उनके अंधविश्वास का उपयोग किया, इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर इसे मान्यता प्रदान करता है। मैं जिस कलीसिया में जाता हूं, अर्थात मेरी कलीसिया में एक परिवार था जिसकी मां और बेटी तो विश्वासी थे, परंतु पिता विश्वासी नहीं था, और हमारा सब प्रयास भी व्यर्थ गया। बड़े दिन की आराधना में मैंने कलीसिया से कहा कि उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें, अतः सबने उससे हाथ मिलाया और शुभकामनाएं दी। उसकी प्रतिक्रिया थी कि हम बहुत अधिक दिखावा करते हैं। जब ईस्टर का दिन आया तब मैंने कलीसिया से कहा कि उसे अधिक मित्रता पसंद नहीं, अतः उससे कुछ दूर ही रहा जाए। मैं भी बस उससे हाथ मिलाकर अलग हो गया। इस बार उसकी प्रतिक्रिया थी कि हम लोग उदासीन हैं। मैं उससे भेंट करने उसके घर गया तो उसने मुझे बाहर कर दिया। वह प्रभु के बारे में सुनना नहीं चाहता था। मेरे प्रियो, 6 माह पश्चात मैं रात में सोने के लिए जा रहा था कि घंटी बजी। मैंने देखा कि वह व्यक्ति भयभीत मेरे द्वार पर खड़ा है। मैंने उसे भीतर आने के लिए कहा और बैठाया तो उसने कहना आरंभ किया कि उसका काम कपड़ों की सूखी धुलाई का है। उसके पास एक महिला काम करती थी जो सुबह आकर उससे कहती है, मैं एक ज्योतिषी के पास गई। उसने कहा कि मैं और जिसके पास मैं काम करती हूं वह अकस्मात ही मर जाएंगे। दोनों ही इस बात को अंधविश्वास और उपहास समझकर हंस पड़े। परंतु 2 दिन बाद वह स्त्री सड़क दुर्घटना में मारी गई। अब यह पुरुष भयभीत था कि वह भी मर जाएगा। मेरे प्रियो, मैंने उससे कहा, यहां मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि उस स्त्री की मृत्यु मात्र एक दुर्घटना है और इससे भविष्यवाणी सिद्ध नहीं होती कि आप भी मर जाएंगे। उसने कहा, जो भी हो मैं मरने के लिए तैयार रहना चाहता हूं, क्या आप मुझे उद्धार की योजना समझाएंगे? मैंने कागज पर चित्र बनाकर उससे उद्धार की योजना समझाई और बताया कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया और प्रभु यीशु ने अपनी जान दी और अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया ताकि संसार पाप से बचाया जाए। उसने उस रात प्रभु यीशु को ग्रहण किया, अपने पापों से पश्चाताप किया। मेरे मित्रों, यहां पर हम देख रहे हैं कि जब एक मनुष्य अपने पापों से पश्चाताप करता है और परमेश्वर की निकटता में आता है, सत्य की खोज करता है, तो परमेश्वर उसे ग्रहण करता है, उसके पापों को क्षमा करता है और उसे एक नया जीवन देता है। हम नहीं जानते कि उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों हुआ, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे अवसर देता है, ऐसे लोगों को आने देता है ताकि उनके जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को जान जाएं। मैं अपने जीवन के बारे में भी आपको कहना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर से दूर था, उसकी सच्चाई से वंचित था, परंतु परमेश्वर ने अपने एक दास को मेरे पास भेजा और उसने मुझसे पूछा, क्या आप यीशु को जानते हैं? यह प्रश्न मेरे लिए कठिन था। मैंने कहा, मैं जानता हूं परंतु पूर्ण रीति से नहीं जानता। तब परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा, क्या आप जानना चाहते हैं? और मैंने कहा, जी हां, मैं जानना चाहता हूं। और तब उसने मुझे परमेश्वर के वचन में से सिखाना आरंभ किया और तब जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगा तो मैंने जाना कि निश्चित रूप से प्रभु यीशु ही मेरा उद्धार करता है। मुझे आज भी याद है 15 फरवरी 1990 जब मैंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। मैंने अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया और उससे कहा कि प्रभु, मैं ये जो जीवन जी रहा हूं ये गलत है, मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता हूं, आप मेरी सहायता करें, मेरे जीवन को आप जैसा चाहते हैं वैसा बनाएं। और प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही अवसर देता है, आपके जीवन में ऐसे लोगों को आने देता है ताकि उसके द्वारा आप प्रभु की सत्यता को जानें। यहां पर हम देख रहे हैं कि यह व्यक्ति जो हमेशा दूर रहता था परमेश्वर की निकटता में आ गया और इसलिए आया क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था और यही कारण था कि उसने सच्चाई को जाना और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। परमेश्वर अंधविश्वास को भी काम में लेकर किसी का उद्धार कर सकता है। जी हाँ, मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता, परंतु मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में भी उद्धार लाना चाहता है। और इस बात को आप जान लीजिए कि इस पृथ्वी पर, आकाश के नीचे, पृथ्वी में, मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। बाइबल हमें बताती है प्रेरितों के काम 4:12 में, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जी हाँ, सिर्फ यीशु जो हमारे पापों के लिए, सारे मानव जाति के लिए, एक जाति, एक कौम, एक भाषा, एक देश नहीं, परंतु सारे मानव जाति के लिए वह क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या आज आप उद्धार पाना चाहते हैं? क्या आज आप उस यीशु के पास आकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं? निश्चय जाने कि वह आपका इंतजार कर रहा है। हम देख रहे हैं कि उस जहाज पर परमेश्वर ने नाविकों के अंधविश्वास को काम में लेकर योना को पकड़वाया। योना जो भाग रहा था, उसने परमेश्वर की गवाही दी और कहा कि मैं यहोवा से भागकर जा रहा हूं। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर कार्य करना चाहता है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त किया है। आप निर्णय लें और अपना जीवन प्रभु की निकटता में लाएं। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
दिल में है तू, तू ही मेरी जिंदगी। की आरजू है। जब तक ये सांसें रहेंगी तेरे ही गीत गाते रहेंगे।